हरे कृष्णा। दिस क्लास ऑन श्रीमद् भगवद गीता सेकंड चैप्टर श्लोक नंबर 37 एंड 38 गिवन एट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस ऑन 28 फरवरी 2017 बाय मायसेल्फ प्रशांत मुकुंद दास।
तो आज का हमारा विशेष श्लोक भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 37 और 38 श्लोक। 37 श्लोक बहुत छोटा सा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी ने दिया है, इसलिए हम विशेषकर 38वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। 37वें श्लोक को बस ऐसे ही अध्ययन करते हैं।
हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्ते युद्धाय कृत निश्चय।
हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य को भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। तो अभी हम 38वें श्लोक को पढ़ेंगे, ये सब साथ में दोहराएंगे।
सुख दुखे समय कृत्वा लाभ अलाभ जय अजयो ततो युद्धयो युजस्व नैवं पापं आव्यप्सिसि। सुखे दुखे समे कृत्वा लाभ अलाभो जय जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापं अवाप्स्यसि। सुखे दुखे समे कृत्वा लाभ अलाभो जय अजयो ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापं अवाप्स्यसि।
तो इसे साथ में दोहराएंगे इसके अनुवाद को। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसे करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं भगवद गीता के 37वें श्लोक में दूसरे अध्याय के, कि यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो क्या प्राप्त होगा? स्वर्ग प्राप्त होगा। हमने पहले भी पढ़ा था, स्वर्ग द्वारम अपावृतम, स्वर्ग का द्वार खुला हुआ है ना। और यहाँ पर फिर से भगवान बता रहे हैं कि अगर तुम मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त होगा, और नहीं भी मारे गए, विजयी हुए, तो पृथ्वी का साम्राज्य मिलेगा। तो दोनों स्थिति में तुम्हें जीत निश्चित है। एक जगह तुम वीर गति होकर के विजय प्राप्त करोगे, एक जगह तुम वीरता के अनुरूप विजय प्राप्त करोगे। इसलिए दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो। और 38वें श्लोक में भगवान बहुत ही मुख्य बात हमको सिखा रहे हैं, जो है कर्तव्य करने की। ज्यादातर लोगों के मन में भ्रांति है, भगवत गीता लोगों का काम धंधा छुड़ा देती है कि नहीं? सबको यही लगता है भगवद गीता का मतलब है काम धंधा छोड़ दो और मंदिर में माला जपो बैठ करके। लेकिन अगर कोई ऐसा बोलता है तो उनको बोलना चाहिए कि आप हमारे साथ चलिए और भगवद गीता को सुनिए, दूसरे अध्याय का 38वां श्लोक। उसमें भगवान कह रहे हैं युद्ध करो, ततो युद्धाया युजस्वम, तत्पश्चात युद्ध करने के लिए लगो। भगवान कह रहे हैं लड़ो, बार बार भगवान कह रहे हैं लड़ो। तो हमारी लड़ाई क्या है? अपने कर्तव्यों की लड़ाई। कर्तव्यों को कर्तव्य विमूढ़ता से निभाना है, कर्तव्यों से भागना नहीं है। लेकिन कर्तव्य कैसे करने हैं? तो भगवान कहते हैं
कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर मा तो संगोस्तु अकर्मण्य। भगवान कह रहे हैं अकर्मण्य होने में भी आसक्त मत हो। तीन चीजें बता रहे हैं। पहला कर्मण्य व अधिकारस्ते, अधिकार अस्ते, मैंने तुम्हें कर्म करने का अधिकार दिया। कोई ये नहीं कह सकता कि भगवान ने कहा कर्म मत करो, लेकिन कहा फल से आसक्त मत हो, दूसरी चीज। और तीसरा कहा कर्म करने के बाद फल का अगर रिजल्ट अच्छा आए तो उसके भी मालिक बनने की इच्छा मत रखो। और चौथा कर्म ना करने में भी आसक्त मत हो, मतलब अकर्मण्य मत बनो, कर्तव्य करते रहो। तो अगर ये पूरा श्लोक कोई जानेगा तब सही मायने में कर्तव्य निभा पाएगा। तो हमको पूरा कार्य करना है, ये नहीं आधा करके छोड़ दिया। तो कैसे करना है? कर्मण्य वाधिकारस्ते मा फलेषु, फल की इच्छा से रहित होकर के। हम कैसे करते काम शुरू करने से पहले ही फल की इच्छा। अभी बच्चों ने एग्जाम दिए नहीं है, पहले ही लोगों ने लड्डू कंटेनर बना के रख दिया है, बेटा तेरे अगर आएगा 90% से ऊपर तो हम लड्डू बांटेंगे, और अगर नहीं आया तो 89 आ गया मान लो तो उदास हो गए। तो हमारे जीवन का अगर जितना भी दुख है 99.99% उसका कारण ही है फल की आसक्ति। कोई भी दुख उठा के देखे जीवन का, उसका कारण यही है कि हम इन चार चीजों में फंसे हैं जिसे भगवान कह रहे मत करो। सुख दुखे समय कृतवा, सुख और दुख में संभाव रखो, सुख में भी संभाव और दुख में। दुख आता है तो हम क्या करते हैं, हे भगवान तूने मेरे साथ ऐसा क्या किया, क्यों किया, मैंने क्या किया था, मैंने तो किसी के साथ कुछ नहीं किया, मेरे साथ क्यों किया, भगवान को गालियां। और सुख आ जाए तो मैंने किया, देखा एक पैर पे खड़े होकर के अपने घर को बनाया, मैंने मेहनत करी, घर बनाया, बच्चे बनाए, परिवार बनाया, हमने अपनी अपनी कंपनी को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को यहां से यहां पहुंचा दिया। सुख दुख समय कृतवा, समान रहो। रहते हैं या तो दुखी बहुत हो जाते हैं या तो सुखी बहुत हो जाते हैं। दुखी हो जाते हैं भगवान को गाली देते हैं और फिर भगवान को बदल लेते हैं। गाली मतलब कहने का अर्थ तात्पर्य है कि मतलब भगवान को बुरा भला बोलते हैं, और फिर भगवान क्योंकि पता नहीं है कि भगवान कृष्ण ही है, हम देवी देवताओं 33 करोड़ को जंप करते रहते हैं, तो एक लाइफ में अगर जंप करेंगे तो 9 लाख से ज्यादा को हम नहीं बच पाएंगे। तो लोग ऐसे करते हैं, इस साल दुर्गा जी, अगले साल शिव जी, उसके बाद गणेश जी, फिर साईं बाबा, फिर ऐसे बदलते हैं। 33 करोड़ है, कब तक बदलेंगे? तो भगवान कह रहे हैं पेड़ की जड़ में पानी डालो, कौन है? भगवान कृष्ण। और श्रद्धावान होकर के, बार बार बदलने की आवश्यकता नहीं है कि अभी सुख मिला तो कृष्ण ही भगवान है, दुख मिला तो कृष्ण कैसे भगवान है, ऐसा कृष्ण ही भगवान है। रक्षति ते कृष्णा न रक्षति ते कृष्णा। पंखे के नीचे रोज रात को सोते, अभी तो वैसे ही पंखा चला रहे हैं लोग, एसी का मौसम नहीं आया, पंखे के नीचे सोते हैं और कई इंसिडेंट ऐसे सुनते हैं पंखा गिर गया, लेकिन जब सोते हैं तो हमको विश्वास होता है कि ये गिरेगा, तभी तो सोते हैं। अगर पता हो कि इसकी पेच ढीले ऊपर से और 5 नंबर पे बच्चे ने चला दिया तो रात को नींद आएगी क्या? विश्वास। 5वें नंबर फ्लैट पे कोई बैठता है, लिफ्ट से 5वें फ्लोर पे जाता है, अगर वो सोचे मेरे 4थे फ्लोर वाले की लेंटर कमजोर है, मतलब मेरी जमीन कमजोर है, 4थे फ्लोर वाले का लेंटर कमजोर है और मेरी मंजिल 5वीं है, तो मतलब मेरा फ्लोर कमजोर है, तो क्या वो चैन से चल पाएगा? घबराहट ही रहेगी, अभी पैर गया नीचे, बस अभी गया, अभी गया। ये विश्वास के साथ ही हम चलते हैं। नाई की दुकान पर जाते हैं, कहते भैया बाल काट दो, आंख बंद करके बैठ जाते हैं, गाना चलता रहता है, हम भी उसमें मनोरंजन करते हैं। अगर वो चाकू लेके गर्दन काट दे तो वो तो कहेगा मैंने तो बाल ही काटे थे, ज्यादा घुस गया, मर गया आदमी, मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन हम विश्वास के साथ जाते हैं, बाल ही काटेगा, पॉकेट नहीं काटेगा, गला नहीं काटेगा। तो ये भगवान कृष्ण पे, रक्षति ते कृष्णा न रक्षति ते कृष्ण, समा दुखा समे कृत्वा, समान भाव से। और इसी को भगवान ने दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में भी बोला, थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं, 48 में भी भगवान कह रहे हैं सेम। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो भगवान कह रहे हैं संभाव होकर योगस्थ कुरु कर्माणि, संभाव होकर अपना कर्म करो, संगम त्यक्त्वा धनंजय और अपनी आसक्ति का त्याग करो धनंजय, हे धनंजय अर्जुन, सिद्धि असिद्धियो सफलता या विफलता समाभूत्वा संभाव होकर के समत्वम योग उच्चते, समता योग कहा जाता है। तो भगवान यहाँ पर योग उच्चते बता रहे हैं कि जो व्यक्ति संभाव रखेगा वो व्यक्ति सही मायने में योग कर पाएगा। तो ये दूसरे का 38 और दूसरे का 48, 38-48 दोनों में भगवान ने एक ही बात बोली, क्या? संभाव, सुखा दुखा समय कृत्वा। और कौन सी परिस्थितियां हैं? लाभ अलाभ, लाभ मिल जाए, फैक्ट्री लगाई लाभ मिल गया, प्रमोशन हुआ लाभ मिल गया, और किसी का डिमोशन हो गया, रात दिन मेहनत करी और डिमोशन हो गया, फिर अलाभ। तो हम उस समय कैसे अपने को अलग कर पाएंगे लाभ अलाभ से, कैसे करेंगे? व्हाट इज द रीजन, कैसे कर सकते हैं? हमें सोचना चाहिए क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, फॉर एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जो कुछ आज मेरे साथ हो रहा है वो मैं कल किसी के साथ करके आया हूं, या तो इस जन्म में या पिछले में या पिछले से पिछले में या उससे पिछले में, पर होगा तभी जब मैंने किया है। यहां पर इस प्रकृति के अंदर कुछ भी बाई चांस नहीं होता। या किसी को ये कहा जाए मेरे साथ में कहते हैं ना बुरा बर्ताव हो रहा है, मेरे साथ गलत हो रहा है, ऐसा कोई शब्द है ही नहीं संसार में। किसी के साथ कोई गलत नहीं होता, गलत से गलत भी किसी के साथ हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि उसने पहले गलत किसी के साथ किया है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हम देखते हैं, जैसे पति पत्नी का विवाद, पति को लगता है कि मैं सही हूं, पत्नी को लगता है मैं सही हूं, ये हमेशा विवाद रहता है। अगर पत्नी ने कुछ बुरा भला बोला तो पति किस प्रकार से उससे अनासक्त हो सकता है, कैसे हो सकता है बताइए? अगर पत्नी ने चुप होकर के, यह है अच्छे व्यक्ति के लक्षण, भक्त के लक्षण नहीं है। भक्त चुप नहीं होता और दुखी भी नहीं होता, अच्छा व्यक्ति चुप होता है लेकिन दुखी होता है। जितने भी कोटेशंस हम गूगल में और व्हाट्सएप पे आजकल इधर से उधर फॉरवर्ड कर रहे हैं वो अच्छा इंसान बनाने के लिए है, भक्त बनाने के लिए नहीं। भक्त के लिए तो गीता ही पढ़नी पड़ेगी, व्हाट्सएप के ज्ञान से आप ऋषि नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है इस चीज को समझना कि भगवत गीता क्या इंपॉर्टेंस है, कि ये खाली चुप होना नहीं सिखाती है, ये साथ में आपको उस व्यक्ति के लिए संभाव की स्थिति भी उत्पन्न करती है, प्रेम की स्थिति उत्पन्न करती है कि कितना अज्ञानी है बोल रहा है। और ये जितना भी दुख का कारण है, किसी ने कुछ कहा और मैं दुखी हो गया, उसका कारण है कि हम समझते हैं जो हमें कोई कुछ कह रहा है वो हमारा अपना है। बच्चे ने कहा कुछ माता से, माँ को दुख हो गया, मेरा बेटा आज तू मुझसे ऐसे बोल रहा है, दुख का कारण क्या है, रूट कॉज क्या है? मेरा है कोई आपका शरीर भी तो आपका नहीं है। हर बार सुनते हैं लेकिन हर रोज इसी में अटक जाते हैं। जब भी अटके बार बार इसी क्वेश्चन में तो जाकर के सोचना चाहिए कहीं वो प्रभु जी बोल रहे थे गीता क्लास में मेरा में तो नहीं अटक गया हूं मैं। और देखेंगे 99.9% चीजों में मेरा ही दुख का कारण, मेरा पति मुझसे कैसे ऐसे बिहेव कर रहा है, मेरी बर्थडे के दिन कैसे विश करना भूल गया, पहले मेरे घर वालों का विश आ गया, ये तो साथ ही में सो रहा था इसने विश नहीं किया। ऐसी भावना जिसके मन में है उसको तुरंत अपने दुख के निवारण के लिए सोचना चाहिए क्यों मुझे विश करेगा, ये कोई मेरा है, मेरा कैसे? ये तो नदी में बहने वाले दो पत्ते हैं जो साथ में मिले और कुछ समय बाद फिर अलग हो जाने वाले हैं। किसी ने विश किया ठीक है, नहीं किया तो ठीक है, हमारा तो होता तो करता, हमारा तो कोई है ही नहीं, हमारा तो कौन है, तो फिर कोई चिंता की बात ही नहीं है, सारे दुख दुख से निवारण हो जाएगा। बॉस सबॉर्डिनेट, बॉस नीचे वाले व्यक्ति को कुछ कहता है या नीचे वाला व्यक्ति पलट के बॉस को कुछ कहता है तो इतनी दुखी रहता है, आज मेरे स्टाफ ने मुझे ऐसा कहा या फिर हमारे बॉस ने हमसे ऐसा कहा, दुख का कारण क्या है? मेरा बॉस, तुम्हारा क्यों है? आप सोचो मैंने कोई क्रिया की होगी पिछले जन्म में, मैं इसका बॉस था, इसको मैंने डांटा, आज इसने मुझे डांटा, खत्म, हरे कृष्णा, रिलैक्स। लेकिन हम क्यों दुखी रहते हैं, सम नहीं रह पाते हैं, क्योंकि लगता है मेरा। और ऐसे ही अचीवमेंट्स में जब हम कुछ प्राप्त करते हैं अपने जीवन में तो हमको लगता है कि मैंने ये कार्य किया है, तो मैं और मेरा, अहम ममेति की भावना, अगर ये मैं मेरा शब्द दो डिलीट हो जाए लाइफ से, आप देखेंगे बहुत बढ़िया लाइफ है। जो बकरी काटी जाती है उसके पीछे कारण क्या होता है? मैं। क्यों काटी जाती है? अगर वो जंगल में चुपचाप बैठी रहे, घास खाती रहे, कोई नहीं पकड़ेगा उसको, लेकिन वो बोलती है मैं, तो उसको पकड़ के ले आते हैं, फिर काट दे, कहने लगते हैं ये बड़ी एनर्जेटिक है, बड़ी जोर से मैं कर रही है। तो हमारे भी फंसने का कारण है संसार में क्या? मैं। अगर आप अपने जीवन में दुख से निवारण चाहते हैं, कितने लोग चाहते हैं दुख से निवारण? सब चाहते हैं। इसका मतलब है सभी दुखी हैं। पहला कारण है सभी दुखी हैं। तो अभी मैंने कल ही एक सेमिनार कंप्लीट किया जिसका नाम था डिस्कवर योर परमानेंट हैप्पीनेस। कौन सा सेमिनार था? परमानेंट हैप्पीनेस। हैप्पीनेस तो सबको मिलती है लेकिन परमानेंट नहीं है, एवर इंक्रीजिंग, हमेशा बढ़ने वाली नहीं है। ऐसी सुख मिलता है हमको जो क्षणिक होता है। जैसे पुराने जमाने में राजा महाराजा जब किसी को पानी में डुबोकर पनिशमेंट देते थे, दंडित करते थे, तो पानी में कुछ देर डुबाते थे और फिर जब वो घुटकर मरने लगता था तो उसकी मुंह को बाहर निकालते थे, सांस आती लगता है बच गया, फिर दोबारा से अंदर गुड़ 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 गुड़। तो हमारा भी पिक्चर देखना, क्रिकेट देखना, जोक इधर उधर भेजना, योगीनाथ प्रभु व्हाट्सएप ग्रुप में हाथ ही जोड़ते रहते हैं, ऐसा मत भेजिए, वैसा मत भेजिए, ये जो कार्यक्रम है ये बहुत ही क्षणिक सुख देने वाला है ना। असली सुख भगवत गीता के ज्ञान में ही है। मान गए तो इस जन्म में भगवत धाम चले जाओगे, नहीं माने तो करोड़ जन्म बाद जाओगे, लेकिन सुख तभी मिलेगा जब कृष्ण की शरण में आओगे। गारंटी लिखवा के ले लो, किसी भी बड़े से बड़े ऑफिसर को ले आना। कल मैंने डिफेंस सोसाइटी में कर्नल ब्रिगेडियर को लेक्चर दिया, पहले दिन कोई नहीं मान रहे थे, छठे दिन कल रोते हुए गए, बोले आपने सच्चाई निकाल के रख दी हमारे जीवन की। विश्वास नहीं होता लोगों को। सच्चा सुख गीता पढ़ने में है। व्हाट्सएप का इस्तेमाल, फेसबुक का इस्तेमाल प्रचार के लिए करना चाहिए, भगवान की सेवा के लिए। ये कविताएं और फूल पत्तियां भेजने के लिए नहीं है, है ना? आपके लिए नहीं कह रहे आप इस्तेमाल मत करें, लेकिन आपको एक दिशा दिखा रहे हैं। चूज किया आपका मर्जी, नहीं चूज किया आपकी मर्जी। भगवान ने आपको फ्री विल दिया है, आजादी, चुनाव आपके हाथ में है, व्हाट टू डू विद योर लाइफ। हमारी एक क्लिक के ऊपर अवेलेबल है भगवत गीता, और एक क्लिक के ऊपर अवेलेबल है आईसीआईसी, एक क्लिक के ऊपर अवेलेबल है आईएसआईएस। अब आपके ऊपर है, आप आईसीआईसी बैंक जाना चाहते हैं, गैम्बलिंग करना चाहते हैं डीमैट अकाउंट खोल के, आप क्लिक करके भगवत गीता पढ़ना चाहते हैं, या आप क्लिक करके आईएसआईएस एजेंट में ज्वाइन होना चाहते हैं, मर्डर करना चाहते हैं, आपके हाथ में, चुनाव आपके हाथ में। ज्ञान सबके पास भगवान ने समरूप बराबर दिया है, लेकिन हमारी प्रॉब्लम वही है कि हम भगवत गीता को अध्ययन नहीं करते हैं। अध्ययन मतलब खाली ये नहीं है पढ़ना, रीडिंग करना, अध्ययन मतलब है पढ़ करके अपने जीवन में अपनाना। फिर देखिए, ट्राई करिए, जहां जहां फंसते हैं दुख आता है, जैसे ही शरीर का रोग आया दुख आया, मेरे साथ क्यों? आर्थर एश नाम के एक बहुत बड़े टेनिस प्लेयर थे, विंबलडन चैंपियन, उन्होंने विंबलडन चैंपियन जीता। जब उनको बीमारी हो गई कैंसर की, तो लोगों ने उनसे पूछा कि यार तुम तो इतने महान आदमी थे, तुमने इतना पैसा कमाया विंबलडन में और लोगों को, बहुत गरीबों की मदद करी, ये कैंसर जैसी बीमारी तुमको क्यों आई? Why you? तो आर्थर एश, क्योंकि गीता पढ़ता था, उन्होंने जवाब दिया अपने रिश्तेदारों को, समाज को, न्यूज रिपोर्टर्स को, कहा हर साल 5 करोड़ बच्चे विंबलडन चैंपियन खेलने के लिए, चैंपियनशिप खेलने के लिए अपने माँ बाप से टेनिस का रैकेट मंगाते, 5 करोड़। उसमें से 5 लाख बच्चे ऐसे होते हैं जिनको रैकेट प्राप्त होता है। उन 5 लाख में से सिर्फ 50,000 ऐसे होते हैं जो उसको खेलने के लिए ट्रेनिंग लेने चले जाते हैं। उन 50,000 में से सिर्फ 5,000 ऐसे होते हैं जो कहते हैं अब मैं इसको अपना प्रोफेशन बनाऊंगा वर्ल्ड में। उन 5,000 बच्चों में से सिर्फ 500 बच्चे ऐसे होते हैं जिनका सिलेक्शन विंबलडन तक होता है, और उन 500 में से सिर्फ 4 ही ऐसे होते हैं जो सेमीफाइनल तक पहुंचते हैं, और 2 होते हैं जो फाइनल तक पहुंचते हैं, और 1 होता है जो विनर होता है, जीतता है। लेकिन जब वो जीतता है और ट्रॉफी पकड़ता है, तब उसके मन में क्या भाव आता है? वाई मी, खाली मैं ही क्यों?
आप सबके पास अच्छा घर है, आप सबके पास अच्छी नौकरी है, आप सबके पास अच्छा परिवार है, खाने के लिए सोचना नहीं पड़ता, खरीद के लाते हैं, खा लेते हैं, मन में जो आता है। आपसे कई गुना गरीब लोग संसार में पड़े हैं, है ना, लेकिन आप हमेशा यही बोलते रहते हैं, अरे मैंने ऐसा क्या किया, मेरे पास आज मर्सिडीज गाड़ी नहीं है, मैंने ऐसा क्या किया। तो दुख लेना है आपके हाथ में, सुख लेना है आपके हाथ में। आप देखेंगे कई ऐसे लोग हैं जिनके पास टांग भी नहीं है चलने के लिए, पैर नहीं है, विकलांग है, उन्होंने ऐसा क्या किया था। तो सबको अपने अपने कर्मों की प्रतिक्रिया मिल रही है, तो तुरंत आपका दुख चला जाएगा कि कर्म के कारण क्रिया की प्रतिक्रिया है, और दूसरा इस संसार में मेरा कुछ भी नहीं। ये दो सूत्र है, पहला कि जो कुछ भी हो रहा है क्रिया की प्रतिक्रिया है, और दूसरा सूत्र है कि मेरा संसार में कुछ भी नहीं है। आप फिर देखेंगे इतना आनंद का जीवन है, क्योंकि आप तो सच्चिदानंद आत्मा है ना, तो आनंद का अनुभव करेंगे। और इसको ट्राई करने के लिए कल हम चर्चा कर रहे थे कि आप लोग अपने जीवन के, अगर भगवत गीता को सही में चेक करना चाहते हैं कि क्या मैंने भगवत गीता को अपनाया है, तिलक लगाना, धोती कुर्ता पहनना भगवत गीता अपनाना नहीं है। कहीं ऐसा लगता हो आप लोगों को कि नहीं नहीं हम तो अभी बाल नहीं कटवा सकते, अभी तो नौकरी के पेशा लोग हैं, वो भगवत गीता अपनाना नहीं है, ये तो प्रचार कार्य के लिए हमको पहनना पड़ता है। भगवत गीता अपनाना ये है कि अपने जीवन के ऐसे ऐसे डर लिखो जिन डर को आपको लगता है कि इनसे मैं बहुत डरता हूं। कहेंगे कैसे डर? पहला डर, मैं मर जाऊंगा, ये डर। दूसरा, मेरी पत्नी या मेरा पति मुझे छोड़कर के किसी और से विवाह कर लेगा, ये डर है लोगों को। या छोड़कर के संसार छोड़कर चला जाएगा, ये डर है। मेरा बच्चा कल को किसी के साथ विवाह कर ले, भाग जाए और मुझे पूछे ना, ये डर है। और इन सारे डरों को लिखो एक पेपर पे, 10-15-20 डर जो लगते हैं आपको, ऐसा ऐसा ऐसा। और फिर देखिए क्या गीता के समा दुखा समय कृतवा, मैं समान रह पाऊंगा ऐसी स्थिति में? अगर रह पाऊंगा तो आपने भगवत गीता को अपनाया। लेकिन अगर उसमें से एक भी डर में आपको लगता है कि अरे नहीं यार, कल ऐसी खबर आई तो मेरा तो दिमाग ही फट जाएगा, तो इसका मतलब अभी 0/11 है, चाहे तिलक लगाओ चाहे मत लगाओ, माला जपो या मत जपो। गीता अपनाने का मतलब है डर का समाप्त हो जाना, क्योंकि डर कब समाप्त होता है? जब हम आत्म स्तर पे होते हैं। आत्मा का कोई विनाश नहीं होता, आत्मा का कोई संबंध ही नहीं होता, आत्मा का कुछ नहीं। आत्मा के स्तर पे आप अच्छे से बिहेव करेंगे सबके साथ। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप लोगों से व्यवहार करना छोड़ देंगे, अच्छे से बात करना छोड़ देंगे। जैसे हम ट्रेन में चलते हैं, यात्रा करते हैं रेलगाड़ी में, कभी ऐसा होता है कि हमारे सामने वाली सीट पे हमें पता है ये हमारे साथ उतरेगा नहीं, हमारे स्टेशन पे नहीं आने वाला है, तो हम उसका कॉलर पकड़ के बोले, मेरे सामने क्यों आके बैठ गया तू, है तपैट तपैट, ऐसे तो नहीं। लेकिन जब वो उतरता है तो रोते भी नहीं, उतर गया स्टेशन पे, उतर गया, ऐसे रोते? हमें पता होता है, मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं इसलिए। लेकिन परिवार के लॉस होने पर, अपने जीवन के लॉस होने पर, अपनी चीजों के बिगड़ने पर हम रोते हैं, क्योंकि हम मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं। तो भगवत गीता हमको मेंटल प्रिपरेशन सिखाती है, मानसिक तौर पर तैयार होना। ये बहुत बड़ी काउंसिलिंग है, इसको साइकोलॉजिस्ट भी यूज करते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी यूज करते हैं, और आप भी अपने निजी जीवन में इस्तेमाल करेंगे तो आपका जीवन सुखमय बनेगा, दुखों से निवारण, तब आप सुख और दुख में समभाव रख पाएंगे, वरना व्यर्थ जीवन चला जाएगा। अगरबत्ती धूप बत्ती भगवत गीता अपनाना नहीं है। प्रभुपाद जी से किसी ने कहा कि आपने इतना सब विधि विधान बताया, इसका कारण क्या है? उन्होंने कहा इसका कारण है ताकि लोग भगवान के हरि नाम पर विश्वास रखें, बस। कोई भी भागवत सुने, कोई भी कथा पढ़े, कुछ भी करें, गीता पढ़े, उसका मूल मकसद है कि हमें कृष्ण से विश्वास ना हटे। हमारा हटता इसीलिए, डर डर तो वहीं आएगा ना जहां हमें विश्वास नहीं कि ये हमारी रक्षा करेंगे। जैसे एक व्यक्ति था, आपको शायद पहले भी बताया होगा, वो कुत्ता उसके पीछे पड़ गया, बेचारा भाग रहा था, भागते 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 उसने बोलना शुरू कर दिया, क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। भाग रहा था तो उसने जब भगवान को पुकारा तो द्वारका में बैठे रुक्मणी द्वारकाधीश, द्वारकाधीश ने कहा, रुक्मणी रुको रुको, भगवान प्रसाद ले रहे थे, आनंद पूर्वक 56 भोग ग्रहण कर रहे थे। रुक्मणी का हाथ पकड़ के बोले, रुको रुक्मणी, अभी मैं प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकता, मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है। अरे भगवान, आप भी
कुत्ता ही तो पीछे पड़ा है, इसके लिए भी आप जाएंगे क्या? कहा देखो कुत्ता क्या, अगर चींटी भी काटने लगे और वो हरी नाम ले तो मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि उसने मुझे पुकारा है। नाम और नामी में कोई भेद नहीं है, मुझे जाना पड़ेगा। तो रुक्मणी बोली भगवान आपसे तो मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ, आप जाइए। तो द्वारकाधीश जाने लगे, यहीं तक पहुंचे थे, थोड़ी दूर पे फिर लौट आए, बोले रुक्मणी खिलाओ प्रसाद। करे क्या हो गया, अभी तो गए वापिस भी आ गए, रक्षा कर ली? कहा रक्षा की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। उस व्यक्ति ने हाथ में पत्थर उठा लिया और कुत्ते को मारने लगा, कि उसने अपनी रक्षा करना अपने हाथ से समझा, उसने विश्वास नहीं रखा कि नाम में कि आएगा भगवान मेरी रक्षा करेगा। अब जब ये कथा सुनाते तो लोग कहते हैं प्रभु जी अब पत्थर नहीं उठाता और कुत्ता काट लेता तो भगवान क्या करते? यही तो विश्वास की बात है, ये जो डर है इसी से तो ऊपर जाना है, ये डर से ऊपर जाना। ऐसा नहीं, आप मैं भी पूर्ण रूपेण से मैं भी तैयार नहीं हूं, तत्व मैं कहूं कि मैं भाषण दे रहा हूं कथा कर रहा हूं तो मैं, ये प्रयास है। जितने प्रतिशत बढ़ते जाएंगे डर से दूर उतना आनंद का अनुभव होगा आपको, और जितना डर के रहेंगे उतना कम आनंद का अनुभव होगा, मजे का जीवन। एक बार वृंदावन जाते हैं तो पॉकेट में खूब पैसा लेके जाते हैं हम लोग, है ना। लेकिन एक बार मैं वृंदावन गया बिना कुछ पैसा लिए, बस में चढ़ा तो उसने कहा अरे भाई टिकट लो, तो मेरे बीड बैग में कुछ 100-200 रुपए रखे थे, मैंने निकाल के टिकट दे दिया, चप्पल भी नहीं पहनी, ऐसे ही चला गया। वृंदावन में तो बिना चप्पलों के चलना है। वहां पहुंचे तो एक आदमी बोला कि रुकने की कोई व्यवस्था है आपकी? मैंने कहा नहीं कोई व्यवस्था नहीं, हमारे घर रुकेंगे? रुक जाएंगे। उन्होंने अपने घर रुकाया, प्रसाद पाया है? मैंने कहा नहीं पाया। उन्होंने खिलाया। दूसरे दिन सुबह उठा, यमुना स्नान किया, भगवान के दर्शन किए, मंगला आरती करी मंदिर में, इस्कॉन मंदिर में, फिर वहां मंदिर में प्रसाद खिला दिया किसी भक्त ने, फिर बाहर निकले, फिर मैंने कहा हमें घर जाना है, तो बोले आप कहाँ जाएंगे? मैंने कहा दिल्ली जाना है। उन्होंने मेन रोड तक छोड़ दिया, मेन रोड पे खड़ा था तो किसी ने कहा अरे आप कौन से हैं? मैंने कहा हाँ आप दिल्ली जाना चाहते हैं? मैंने कहा छोड़ दें आपको, छोड़ दें। उन्होंने लाके मोड़ पे छोड़ दिया, दिल्ली के वापस घूम के आ गए, कोई टेंशन नहीं। इतनी अच्छी यात्रा जो हुई, उतनी यात्रा मेरी आज तक पिछले 11 सालों में कभी नहीं हुई, वही यात्रा ऐसी पूर्ण यात्रा थी अपने आप में एकदम। तो ये जो डर है ना हमारा, इस डर को कभी कभी प्रयास करना चाहिए काटने का, तोड़ने का, कि ऐसा हो जाए कि मेरी पोजीशन कल नारे में जॉब पे आऊं और वो कहें बहुत बढ़िया थैंक यू आप जॉबलेस हैं, तब क्या होगा? व्हाट विल हैपन? क्या मैं संभाव रख पाऊंगा ये सोचूंगा कि मेरी क्रिया की प्रतिक्रिया है? क्या मैं सोच पाऊंगा मेरे पिछले जन्मों के कर्मों का फल है जो मैं इतना गीता सुन रहा हूं, गीता पढ़ रहा हूं, इतना सब कर रहा हूं? तो इसमें समझने वाली बात है कि भगवान लेकिन टेस्ट ऐसा तभी देते हैं जब आप उस टेस्ट को झेलने के लिए तैयार हैं। भगवान देंगे भी नहीं, वो तो देख रहे हैं ना प्रतिशत कितनी शरणागति है। टेस्ट तभी आएगा जब आप उसके लिए तैयार हो। दूसरी की कक्षा के लिए तैयार हो तो दूसरी का ही टेस्ट आएगा, पांचवी का नहीं आएगा। पांचवी के लिए तैयार हो तो पांचवी का आएगा। लेकिन अगर प्रगति करनी है तो टेस्ट तो एजुकेशन सिस्टम भी ये सिखा रहा है, ऑफिस में भी प्रमोशन के लिए टेस्ट देना पड़ता है, टेस्ट तो देना पड़ेगा। परीक्षाएं आएंगी, उन परीक्षाओं में विफल हुए तो नीचे, सफल हुए तो आगे। सफलता और विफलता किस पर निर्भर करती है? कि सफलता और विफलता में संभाव रखना है और कुछ नहीं। सफलता यही है कि संभाव रहे, विचलित ना हो मन। और इसको करने के लिए भगवान ने 48वें श्लोक में बताया, संभाव को कहते हैं योग। योग मतलब होता है जुड़ना, प्लस योग मतलब क्या होता है? और आजकल क्या चल रहा है? योगा। योगा कुछ नहीं होता, योग होता है। और योग के कई ना तरीके हैं। एक होता है ज्ञान को लेकर अर्जित करके भगवान से जुड़ना, उसे कहते हैं ज्ञान योग। ध्यान करके भगवान की क्रियाओं का, उनकी लीलाओं का, भागवत पे ध्यान लगाना, वो है ध्यान योग। हठी होकर के अपने चारों तरफ अग्नि जला करके भगवान से प्रार्थना करना कि देखो मैं कितनी तपस्या कर रहा हूं, मुझे अपने से जोड़ लो, इसको कहते हैं हठ योग, है ना। भगवान की भक्ति में अनुकूल तरीके से जुड़ना और भगवान के हरि नाम जपना, गीता पढ़ना, इसको कहते हैं भक्ति योग। तो सारे योग, योग का मतलब है जुड़ना। किससे जुड़ना? भगवान से जुड़ना। आत्मा का कर्तव्य है परमात्मा से जुड़ना, अंश का कर्तव्य है पूर्ण से जुड़ना। लेकिन अगर हम जुड़ते नहीं है तो हमने सभी योग अपना बेकार कर दिया। तो भगवान कहते हैं योग का मतलब है अष्टांग योग। 8 प्रकार के योग के अंदर चीजें आती हैं। अब इस संसार में लोगों ने उस योग को, किसी योग में अगर 8 चीजें नहीं है तो वो पूर्ण योग नहीं है। जिसे आप योगा कहते हैं वो खाली आसन और प्राणायाम है, वो खाली, उसमें यम नियम नहीं है। जिसे आप ज्ञान योग कहते हैं उसके अंदर खाली ज्ञान ज्ञान है, उसके अंदर न यम है न नियम है, ना उसके अंदर कोई प्राणायाम है ना आसन है, खाली उसमें कंसंट्रेशन है, धारणा है, जिसे आप ध्यान योग कहते हैं। उस ध्यान योग में खाली मेडिटेशन है, ध्यान धारणा समाधि ध्यान। तो आठ प्रकार की चीजें जब पूर्ण एक ही चीज में हो उसे कहते हैं अष्टांग योग, और वो खाली भक्ति योग में मौजूद है। वरना सब लोगों ने एक एक अंश को लेकर योग को योगा बना दिया, आसन और प्राणायाम को कह दिया योगा। क्यों करते हैं योगा, क्यों करते प्रभु जी योगा? कौन सी चीज का स्वास्थ्य, शरीर का या आत्मा का? शरीर नश्वर है या फिर अनश्वर है? नश्वर है। तो नश्वर चीज को स्वस्थ करके क्या मिलने वाला है? किसको स्वस्थ करना चाहिए? कोई करता है क्या? फिर योगा कैसा हुआ? तो बेकार हो गया, फ्लॉप शो। फिर भी करोड़ों रुपया कमा रहे हैं लोग योगा में, चैनल चल रहे हैं, पूरे पूरे आस्था चैनल खरीद ही रखा है योगा ने, क्योंकि हम भ्रमित है ना। हर आदमी शरीर की आसक्ति में, शरीर के भोग विलास में लगा है। एक आदमी बड़ी जोर जोर से श्वास क्रिया कर रहा था पार्क में, मैंने पूछा कि इतना सब क्यों कर रहे हो? गुरु जी हमारा ना लीवर खराब है। लीवर खराब है तो प्राणायाम बताया है, श्वास क्रिया प्राणायाम। क्यों? बोले इसलिए ताकि हमारा लीवर ठीक हो जाए। अच्छा, क्यों खराब हुआ? कहा इसलिए कि हम शराब पीते थे, नॉनवेज खाते थे, तो योग गुरु ने बोला हमारे प्राणायाम करो, आपका लीवर ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ठीक हो जाएगा फिर क्या करोगे? कहा फिर से पियेंगे। तो क्या हुआ, क्या उसने अपने समय का सदुपयोग किया? दुरुपयोग। तो हम ये नहीं कहते कि व्यक्ति को स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखना चाहिए। स्वास्थ्य वो माध्यम है जिसके द्वारा साध्य तो प्राप्त किया जाएगा, पर स्वास्थ्य में इतना बिजी ना हो जाएं कि योग का असली अर्थ ही भूल जाएं। योग का योगा हो गया डब्बा गोल। योग अष्टांग योग में आठ प्रकार की क्रियाएं आ रही हैं। पहली है यम। क्या है यम? यम के अंदर क्या क्या आता है? पहला है अहिंसा। अहिंसा कैसी है? किसी से भी बुरा नहीं बोलना, शब्द से मानसिक रूप से किसी के प्रति हिंसा नहीं करना, यह अहिंसा। ये योग का पहला अंश का पहला अंश, यम का अहिंसा। दूसरा आता है सत्य। यम के अंदर ही दूसरा आता है सत्य। जब भी बोलेंगे क्या बोलेंगे? और संसार का सत्य क्या है? राम नाम, राम का नाम सत्य है, और कुछ सत्य नहीं है, और कुछ सत्य नहीं है। इसीलिए मरने के बाद बोलते हैं मुर्दा सुन नहीं पाता और बोलने वाले समझ नहीं पाते। ये सबसे बड़ा सत्य है, सरप्राइजिंग थिंग। जो मरता है वो सुन नहीं पाता, जो बोलते हैं वो समझ नहीं पाते। राम का नाम ही तो जब भी चर्चा करे किसकी करे? किसी की शादी में जाकर बोले राम नाम सत्य है, ठीक है? अरे हंस रहे आप लोग, राम का नाम ही तो सत्य है, अभी तो हमने ढूंढा। किसी की बर्थडे में जाए तो क्या बोले? राम नाम सत्य है जी, राम नाम सत्य है। लोगों ने सोचा है मरने के बाद ही बोलना चाहिए, क्योंकि उसके बाद तो कोई फायदा नहीं है, तभी वो बेकार क्रिया है वो एकदम। तब बोलना राम नाम सत्य, तब बोलना चाहिए जब जीवित है, सुबह सुबह उठ के राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य। लेकिन हमने उसको मौत के साथ जोड़ दिया है मरने के बाद। ये हमारी कंडीशनिंग है दिमाग की, इसको सुधारना है, इसी को कहते हैं। इसलिए लोग बोलते हैं इस्कॉन वाले ब्रेन वॉश कर देते हैं। हाँ करते हैं, जिसमें गंदगी भरी उसको सफाई करते हैं और उसको सही रूप से धोकर के आपको भगवान और भक्त बनाते हैं, आप भगवान के प्रति भक्त बनाते हैं आपको। अहिंसा, सत्य, और तीसरी चीज है अस्ते। अस्ते मतलब चोर की प्रवृत्ति को छोड़ना। भगवत गीता कहती है हमें चोरी करने की प्रवृत्ति है, कुछ ना कुछ चोरी करेंगे, है ना? चाहे शब्दों की चोरी करेंगे, समय की चोरी करेंगे, शब्दों की चोरी करेंगे, रिश्ते की चोरी करें, कहीं ना कहीं चोरी। अस्ते इसको बोलते हैं, अस्ते। तो हमारे शरीर के अंदर जो है अस्थियां हैं, अस्थियां बोलते हैं ना, अस्थि विसर्जन। इस अस्थियों को अस्तेय करना चाहिए, चोरी की प्रवृत्ति से निवृत्त होना चाहिए। चौथा कार्य है यम का, ब्रह्मचार्य का पालन करना। ब्रह्मचार्य का पालन, ब्रह्मचार्य का पालन मतलब कि अपनी पत्नी और अपने पति के अलावा किसी के बारे में सोचना या उनके साथ संबंध स्थापित करना, ये यम है। कितने सारे लोग दिखा दूं जो योगा गुरु भी हैं लेकिन वो ब्रह्मचार्य अस्ते में फंस जाएंगे, चोरी प्रवृत्ति में फंस जाएंगे, या माता प्रभु के रिलेशन में फंस जाएंगे, और उन्हें आप योगा गुरु बोलते हैं, उनकी आप फोटो भी लगाते हैं, उन्हें आप पूजा भी करते हैं, बाबा जी भी बोलते हैं, कैसे हैं? कैसा गुरु है जो कोई ब्रह्मचार्य का पालन नहीं कर पाया? एक ब्रह्म ब्रह्मचारी होता है जिसने विवाह नहीं किया, लेकिन गृहस्थ में रहकर अपनी पत्नी एक पत्नी व्रत जो रामचंद्र जी ने धारण किया उसको भी ब्रह्मचारी कहते हैं, ये भी ब्रह्मचारी है। और पांचवा है, बताते हैं कि संचय करने की प्रवृत्ति को समाप्त करना, ज्यादा उतना ही रखना जितना मेरे लिए। अब कई कई बाबा जी के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी निकलती है तो उन्होंने यम ही नहीं किया तो योग क्या करेंगे, और योग नहीं करेंगे तो भगवान से कैसे जोड़ेंगे। तो उसने बोला अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब उतना ही रखें जितना मुझको आवश्यकता है। सब्जी में नमक कितना डालते हैं, जितना स्वाद दे, ज्यादा डालेंगे तो बेस्वाद, कम डालेंगे तो बेस्वाद, उतनी ही रखें संचय, धन उतना रखें जीवन में, सामान उतना रखें, एक मोबाइल काफी है, एक मोबाइल में दो सिम, दूसरे मोबाइल में तीन सिम, पांच सिम रख के बोले मिलता एक भी नंबर नहीं है, ऐसे संचय नहीं करना है हमको, संचय उतना ही करना है जितने की आवश्यकता है, इसको बोलते हैं यम। दूसरा आता है नियम, जीवन में कुछ नियम होने चाहिए, प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ। नियम को अगर हम भाग में बांटे तो पहला नियम है पवित्रता, शौच, शौच क्रिया, पवित्रता, पवित्र मतलब अंदरूनी पवित्रता बाहरी पवित्रता। गर्मियों में तो कम से कम लोगों को तीन बार स्नान करना चाहिए, तीन बार नहीं कर सकते तो दो बार तो करना चाहिए, पेरिस वाले ना बन जाना, पेरिस में लोग 10-10 दिन में स्नान करते हैं और 10 दिन में नहाने के बाद जब थोड़ी सी उनको ऐसा लगता है 10 दिन हो गए 12 दिन हो गए तो परफ्यूम लगाते हैं, और इसीलिए परफ्यूम वहां के बड़े मशहूर हैं, लोग खरीद के लाते हैं पेरिस परफ्यूम, पेरिस ब्यूटी। वो जानते नहीं है कि पेरिस ब्यूटी जो है बड़ी पेरिस अगली है वो, है ना, क्योंकि वो नहाते नहीं इसलिए उन्होंने परफ्यूम्स डिजाइन किए। हमें जरूरत नहीं परफ्यूम की, अपने स्वस्थ शरीर के ऊपर अगर आप तीन बार स्नान करेंगे ना कोई डिओड्रेंट परफ्यूम नहीं चाहिए आपको, नहाए तो तीन बार, बड़े एक बार बड़े मुश्किल से नहाते प्रभु जी आप, तीन बार की बात, टाइम कहाँ है हमारे पास। तो शौचम और अंदरूनी शौच कैसे आएगी, पवित्रता भगवान के नाम के जप करने से। दूसरा है संतोष, जीवन में संतोष रखना चाहिए व्यक्ति को, ये जो लाभ और अलाभ की स्थिति में भगवान बता रहे संभाव रखना, ये तभी है जब संतोषी व्यक्ति हो, सेटिस्फाइड, जो मिला मुझे मेरी क्रिया की प्रतिक्रिया के अनुसार पूर्ण मिला है, एक रुपया किसी को ज्यादा नहीं मिल सकता, एक कम नहीं मिल सकता, ऐसा संतोष लाना है। ठाकुर जी हैं देखने वाले, बच्चा कभी देखा असंतोष, अरे पापा आपके घर में पैदा हुआ, मुझे तो ऐसा लगता है अंकल के घर होता तो ज्यादा अच्छा होता, आप कैसे गंदे हो, ऐसे बोलता है कभी, उसे भरोसा है, संतोष है जिस घर में आया हूँ प्यार पूरा मिल रहा है मुझे। लेकिन हम जब बड़े होते हैं ज्ञान की वृद्धि होती है, तो ज्ञान की वृद्धि नहीं है अज्ञान की वृद्धि है कि असंतोषी हो जाते हैं। तीसरा है तपस्या करना, कोई अगर तपस्या नहीं कर सकता तो वो गुरु योगी भक्त बनने योग्य नहीं है, और हमारी तपस्या ये है जो भी खाएं भगवान को भोग लगा के खाएं, बिना भोग लगाने खाने वाला पाप खाता है। जो खाएंगे कैसे खाएंगे, भोग लगा के खाएंगे। भोग कैसे लगाया जाता है, भगवान के सामने रख के उसमें तुलसी का पत्र डाल के सामने भगवान का मंत्र पढ़ना होता है, अगर कोई मंत्र नहीं आता तो बोल सकते हैं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। और फिर होता है चौथा स्वाध्याय, स्वयं का अध्ययन करना, मैं कौन हूं मैं, और क्या अध्ययन करना चाहिए, भगवान का, भगवान के शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। जैसे क्षत्रिय को शस्त्र चाहिए होते हैं, भक्त को क्या चाहिए होता है, शास्त्र चाहिए, स्क्रिप्चर्स चाहिए, गीता भागवत, तो अध्ययन करना चाहिए, ये नियम है हमारे जीवन के। और पांचवा नियम है ईश्वर प्रणिधान, मतलब पूर्ण रूप से ईश्वर पे भरोसा, कच्चा ना पड़ जाए भरोसा, बोले प्रभु जी टांग में मोच आ गई थी, हमने भगवान की प्रार्थना करी, अब मोच ठीक नहीं हो रही तो हमने माला छोड़ दी, बोले माला अगर मोच भी ठीक नहीं कर सकती तो फिर ऐसी माला करने का फायदा ही क्या है, ना नहीं करनी चाहिए ना, छोड़ देनी चाहिए, सब लोग काट के फेंक दिया करो कैंची से अपनी माला, करनी चाहिए पूर्ण रूपेण ईश्वर प्राणिधान, पूर्ण रूपेण भरोसा हो ठाकुर जी पे, रक्षति ते कृष्ण न रक्षति ते कृष्ण, रखा करो तो भी तुम हो, नहीं करोगे तो भी तुम ही हो, ईश्वरम परम कृष्ण सच्चिदानंद, भगवान सच्चिदानंद है, परम कृष्ण है। तो ये है यम नियम, और फिर क्या आता है आसन, तो जीवन में आसन लगाना चाहिए, कौन सा आसन लगाना चाहिए, निद्रा आसन, जब भी मन करे निद्रा आसन लगाओ सो जाओ, कुंभकर्ण भी लगाता था, उसने मांगा इंद्रा आसन,
और बाद में जिभा पलट गई तो क्या बोला, निद्रासन, 6 महीने का निद्रासन। तो हम लोगों को भी निद्रासन बहुत पसंद है, सुबह देर तक सोना, रात को भी सोना, दोपहर में भी सोना। तो हमें लगाना चाहिए पद्मासन, पद्मासन में जप करना चाहिए, पद्मासन में पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान पद्म कमल है, पद्म के ऊपर बैठे हैं, तो हमें भी पद्मासन लगाना चाहिए। किसी का शरीर की स्थिति ऐसी है नहीं लगा सकता, तो वो कुर्सी पर बैठकर भी जप कर सकता है, चल के भी कर सकता है, व्हील चेयर पर भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है। लेकिन अगर लगा सकता है आसन, तो कौन सा आसन, पद्मासन, और कोई आसन नहीं लगाना। ऐसा आसन मत लगाना, एक बार एक व्यक्ति टीवी देख रहा था, बोला बाबा जी बता रहे थे सीधे टांग को सीधे कंधे पे चढ़ाओ, दूसरी टांग को उल्टी टांग को उल्टे कंधे पे चढ़ाओ, दोनों चढ़ा लिए, उसके बाद लिखा हुआ आ गया टू बी कंटिन्यूड। ओ घबरा गया, ऐसे टांग ऊपर है नीचे आता नहीं उतारना। फोन मिलाया नंबर पे, बाबा जी क्या, फोन लगाया, बोले बाबा जी चढ़ा तो दी उतरवा तो देते, तो ऐसा आसन नहीं लगाना कि उतारने के लिए फोन करना पड़े, आसन लगाना है नॉर्मल पद्मासन। फिर है प्राणायाम, प्राणायाम का मतलब क्या है, प्राण, हमने पढ़ा था 5 प्रकार के प्राण वायु होती है गीता के अनुसार, जो कि चेतना सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर को जोड़ के रखती है प्राण वायु। इन 5 प्राण वायु के क्रियाओं को कंट्रोल करने को कहते हैं प्राणायाम, सांसों की श्वास क्रिया से प्राणों को वश में करना। तो इसको हमें श्वास को उतना इस्तेमाल करना है जितने श्वास से हमारे भक्ति हो जाए बस, तो ऐसा नहीं करना है लीवर ठीक हो जाए और ये ठीक हो जाए और वो ठीक हो जाए, करना चाहते हैं करते रहिए, लेकिन उत्तम है श्वास क्रिया से भक्ति हो जाए इतनी। तो जप करने से पहले एक लंबी सांस लेकर के जप आरंभ कर सकते हैं, इसे कहते हैं प्राणायाम। 5वां होता है हाँ जी प्रत्याहार। क्या होता है प्रत्याहार, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। कौन सी इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां, इनको कहां लगाना, सेवा में लगाना। आंखों को कैसे लगाएंगे भगवान की सेवा में, नाक को कैसे लगाएंगे, कान को कैसे लगाएंगे, हाँ जी श्रवण करके, क्या श्रवण करेंगे, FM भजन, भजन श्रवण करके, और जिह्वा को कैसे लगाएंगे, जप नहीं करेंगे, अरे प्रसाद खा के चालू, जप भी तो करना होता है, जप करके प्रसाद खा के, और त्वचा को कैसे लगाएंगे, भगवान की सेवा करके, भगवान के भक्तों के चरण छू के, भगवान के भक्तों का आलिंगन करके, शास्त्रों को टच करके, भगवान के चरणों को टच करके, अपनी त्वचा को। टांगों को कैसे करेंगे,
मंदिर जाके,
हाँ जी मंदिर जाके, हाथों को प्रणाम करके, उदर को कैसे करेंगे, उदर को प्रसाद डाल के, इसके अंदर अब भूल गए प्रसाद, प्रसाद डाल के कर सकते हैं और प्रणाम करके भी कर सकते हैं, है ना। और जननेंद्रियों को कैसे करेंगे स्वच्छ, पुत्र पुत्री ऐसे उत्पन्न करें जो कृष्ण भावना भवित हो, और अगर कर दिए तो उनको कृष्ण भावना भवित बनाए, ऐसे हमारी सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लग सकती है। वरना अगर इंद्रियां भगवान की सेवा में नहीं लगी तो किसकी सेवा में लगेंगी, माया की सेवा में, शरीर की सेवा में। नकली इंद्रियों को कंट्रोल ना करें, जैसे एक बाबा जी थे व्हाइट कपड़े वाले, नाम नहीं लेंगे, उन्होंने मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था, और नाम था उनका मौनी बाबा, तो बहुत जय जयकार करते थे सारे शिष्य, मौनी बाबा की जय हो, मौनी बाबा की जय हो, बाबा जी आप कुछ खाते पीते नहीं, कपड़ा बांधा है, करे नहीं उठा के खा लेते नीचे बोलते नहीं है, अच्छा अच्छा। तो बोले फिर भूख लगती है तो कैसे बताते हैं, तो बोले लिख करके बताते हैं। तो उनके शिष्य पूछते थे बाबा जी क्या लेंगे, तो कहते हैं ब्रेकफास्ट में चिकन और बिरयानी और रात को दारू। तो ये कैसे बाबा जी हैं, इंद्रिय वश में करी है इन्होंने, खाली ये ऊपर रूप से इंद्रियों को वश में करने का तरीका है। सच्चाई इंद्रियों का वश में करने का मतलब है इंद्रियों का पूर्ण इस्तेमाल भगवान की से, इसको कहते हैं प्रत्याहार। और फिर है ध्यान, ध्यान क्या है, भगवान के नाम जप में ध्यान, जब बोले हरे कृष्णा तो सुने हरे राम, नहीं जब बोले हरे कृष्णा तो सुने हरे कृष्णा, कुछ और नहीं बजना चाहिए, बोले हरे कृष्णा और बजे कुछ और, बोले हरे कृष्णा सुने हरे कृष्णा। किसी ने पूछा था भगवत धाम का रास्ता कितनी दूर है, भगवत धाम का रास्ता पृथ्वी से कितनी दूर है बताइए, कितनी दूर है भगवत धाम पृथ्वी से, हाँ जी कितनी दूर है, 40 करोड़ योजन, 4.32 light year away, कितना है, सब जगह है भगवत धाम, वाह बहुत बढ़िया। और कितनी दूर है भगवत धाम माता, कोई बताएंगे,
स्नेह गौरांगी माता जी, भगवत धाम कितनी दूर है? हाँ, हृदय में है। ठीक, भगवत धाम है, बता दूं उत्तर, अगली बार के लिए छोड़ दूं, टू बी कंटिन्यूड। अच्छा, भगवत धाम है एक बालिश इस अंगूठे से इतना। कहेंगे कैसे? इसको लगाइए इतना यहाँ पर, ऐसे ही है, यहाँ बोलना है, यहाँ से सुनना है, इतनी दूरी पर है भगवत धाम। बस जो ध्यान पूर्वक बोलकर अगर सुन पाएगा तो उसका भगवत धाम इतनी दूरी है, बस इतना कवर करना है आपको, ज्यादा नहीं मेहनत करनी है, इतना बोलना है और धुन सुनना है, यही ध्यान है। ध्यान का मतलब ये नहीं आंख बंद करके बैठ जाना, बोले जब तक सब कुछ जीरो नहीं हो जाएगा तब तक उठूंगा नहीं, वो ध्यान नहीं होता, वो नकली है, फेक। उसको बैठने के लिए 60 सालों तक एक जगह पर बैठना पड़ता है, उसको कहते हैं मेडिटेशन। बैठ सकते 60 साल एक जगह पे? 60 घंटे? 6 घंटे? तो फिर कैसे करेंगे ध्यान? इसलिए हमारा ध्यान है कृष्ण का नाम बोलो, कृष्ण का नाम, ये ध्यान है। और धारणा क्या है? धारणा है मन को वश में करना। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से और मन ही करत फजीत। फजीत फंसा देता है ना, संसार में सारी प्रॉब्लम ही मन के कारण है। अच्छे खासे भक्ति कर रहे थे विश्वामित्र, मन भटका और मेनका ने सब गड़बड़ कर दिया। शौबरी ऋषि अच्छे खासे पानी में तपस्या कर रहे थे, मछलियों को देखा मन विचलित हो गया। तो मन को वश में कैसे करेंगे? कैसे करेंगे मन को वश में? हाँ जी, जब करके। जैसे मन जहां जाता है सारी इंद्रियां वहीं जाती हैं, है ना। मन जाएगा अगर किसी स्त्री के पीछे तो सारी इंद्रियां कहां जाएंगी? स्त्री के। मन जाएगा पुरुष के पीछे, सारी इंद्रियां कहां जाएंगी? पुरुष। मन जाएगा पीवीआर पिक्चर हॉल में तो सारी इंद्रियां कहां जाएंगी? पिक्चर हॉल। मन जाएगा गोलगप्पे खाने तो कहां जाएंगी? सारी गोलगप्पे। तो ये मन जो है रानी मधुमक्खी है, रानी मतलब क्वीन, है ना, क्वीन जो है क्वीन बी, और ये जहां जाती है सारी मक्खियां सारी इंद्रियां वहीं जाती हैं। तो रानी मधुमक्खी को बंदी बना लो मन को। कैसे बंदी बनाओगे? मन सदैव कृष्ण पदार विंदयो, भगवान के चरणों में लगा के रखो। जब भी आंख बंद करो भगवान के, कृष्ण के चरण, भगवान का मुख, भगवान का चित्र, भगवान याद आने चाहिए। ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। अगर ऐसा रहेगा तो मन हमारा कहां रहेगा? वश में रहेगा। और आखिरी क्या है? ध्यान, धारणा, समाधि। तो लोग समाधि का मतलब समझते हैं जब प्राण छूट जाएंगे, हमारे शरीर को मिट्टी में नमक के बीच में दबाएंगे या फिर जलाएंगे, उसको कहेंगे समाधि। वो समाधि नहीं है। समाधि का मतलब है जब हमारी आत्मा पूर्ण रूपेण संतुष्ट हो जाएगी। और आत्मा कब संतुष्टि का एहसास करती है? जब वो परमात्मा का नाम स्मरण करती है। तो ये सारी चीजें क्या योगा में है, क्या मेडिटेशन में है? सब में है, उसके अंग है। पूर्ण रूपेण किसमें है? भक्ति में, और किसी में है ही नहीं। इसलिए अगर पूर्ण रूपेण भक्ति करना चाहते हो तो ये योगा करो, और ये योगा करने से आप क्या हो जाओगे? समभाव, सुख दुख समे कृत्वा, समान रूप से हम देख पाएंगे। हरे कृष्णा, थैंक यू।